मानयंबु कृथास्वाम तु नंदगोप सुतम प्रियम जानीमु अंग व्रजश्लाघ्यम देही वासांसी वेपिता। अरे भैया, अरे कृष्ण, तुम हमको आप हमारे कपड़े दे दो। कहा कि हम नहीं देंगे, तुम यही आओ, तो हम तुम्हारी दासियां हैं, अब तो कपड़ा दे दो। क्या अच्छी बात है, अब तुम हमारे पास आओ, ले जाओ। तो उन स्त्रियों को कपड़े दे दिए। कपड़े देकर के भगवान ने कहा, देखो तुम मुझे पति रूप से प्राप्त करना चाहती हो ना, तो मैं सांसारिक पति के समान पति नहीं होता हूं। तुमको विचार करना चाहिए कि मैं सर्वव्यापक हूं, सबको मिला हुआ हूं, सबका पति हूं, सबका स्वामी हूं। तुमने मेरे और जल के बीच में भेद समझा है, मेरे और कपड़े के बीच में भेद समझा है, तुम्हारे और हमारे बीच में कपड़े का आवरण, ये ठीक नहीं है। जीव के और भक्त के बीच में कोई आवरण नहीं रहना चाहिए। मैं निरावृत होकर सबको मिला हुआ हूं, तो जीव का भी यही कर्तव्य है कि वो निरावृत होकर मेरे पास आए। मेरी इस लीला से तुम्हें यही बात समझनी चाहिए। तुमने आज वरुण देवता का अपमान किया है, जल के अंदर तुम स्नान कर रही हो और कपड़ा सब उतार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नग्न स्नान कभी नहीं करना चाहिए। जो मैं यहां हूं, जिससे तुम संकोच कर रहे हो, क्या मैं जल में नहीं हूं? और क्या तुम जल के अंदर मुझे नहीं देखे? क्यों नहीं देखे कि तुम्हारे अंदर ये सांकोच्य है, तुम्हारे अंदर एक कुछ मर्यादा की आड़ आई हुई है। नहीं, मेरे यहां आने में ये संकोच भाव नहीं रहना चाहिए, न संकोच रहे, न अश्रद्धा रहे, और न किसी प्रकार का संदेह रहे। सर्वथा निरावृत होकर के मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अतः तुमको वरुण देवता से माफी मांगनी चाहिए, जल देवता से माफी मांगनी चाहिए। तुमने गलत काम किया है, इस प्रकार से तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब ने हाथ जोड़ दिए, कृष्ण से भी हाथ जोड़े। भगवान ने कहा, देखो अब हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। दृढ़ प्रलब्धा कृपया चहा पिता प्रस्तो विधा क्रीड न वच्चकारिता वस्त्राणि चैवापहृतान्यथा अथाप्यमुम तानाभ्य सूयन प्रिय संग निर्वृता। परंतु देखो परीक्षित, जिन गोपियों का इन्होंने कपड़ा ले लिया था, उन गोपियों के मन में लज्जा का तो अनुभव हुआ, उस लज्जा को भी उन्होंने खींच लिया, संकोच को भी कृष्ण ने खींच लिया, कपड़ों को भी उन्होंने ले लिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन गोपियों के द्वारा जब ये चीजें भगवान लेने लग गए, तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं, और उसके कारण से नाभ्य सुयन उन्होंने कृष्ण में कोई दोष नहीं देखा। तो भाई, जब गोपियों के कपड़े लिए गोपियों ने दोष नहीं देखा, तो हमें दोष देखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन गोपियों ने दोष नहीं देखा। गोपियों ने ये कहा, हमारे कपड़े लिए तो ठीक किया, क्योंकि हमारा संकोच भी तो आपने ले लिया। हमारे और तुम्हारे बीच में जितनी बाधाएं थी, वो बाधाओं का हरण किया है, ये कपड़ा वगैरह तो बहुत पीछे रह गया है। और हे कृष्ण, हम तुम्हारे में कोई दोष नहीं देख रहे हैं। भगवान ने कहा, हे गोपियों, मैं तुम्हारे पावन संकल्प को अच्छी तरह से जान रहा हूं। तुम मेरा संग चाहती हो, मेरा प्रेम चाहती हो, तो देखो मयानुमोदित है सोसौ सत्यो भवितुमर्हति। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, वो बात सत्य होकर के रहेगी। जो व्यक्ति मेरे में अपना चित्त लगाता है, उसकी संसार के विषय की कोई कामना नहीं रहती है। जैसे आग में किसी बीज को रख दिया जाए, आग में किसी धान को रख दिया जाए, तो फिर उसमें उगने की शक्ति नहीं। ऐसे मेरे अंदर जिसने बुद्धि रख दी है, उसकी संसार की कोई कामना की बीज उसमें होता ही नहीं है। इसलिए आप जाओ, आपका काम पूर्ण हो चुका है, आपको जो करना चाहिए था वो काम आपकी तरफ से पूरा हो चुका। अब उस दिव्य रास के अंदर बुलाने का और दिव्य रास का काम करने का, वो अब मेरा काम, वो मेरे पर छोड़ो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम्हारा इतना ही काम था कि मेरे और तुम्हारे बीच में संकोच न रहे, आवरण न रहे, छिपाव न रहे, किसी प्रकार का कोई विचार न रहे, वो तक काम तुमने कर दिया है। तो यदुद्दिश्य व्रतमिदम चेरुरार्यार्चनम सति, इसी के लिए तुमने ये अर्चना की थी ना, वो अर्चना तुम्हारी सफल हो गई। इस प्रकार से भगवान उन गोपियों के प्रसन्न भाव, उनके शुद्ध भाव से प्रसन्न हो गए। योगेश्वरों के ईश्वर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। फिर भगवान अपने सखाओं के साथ में आगे चले गए। देखो राष्ट्रीय की तैयारी है, ध्यान रखना आप लोग, कितनी कितनी लीलाएं कर रहे हैं, सब वहीं आकर के समाविष्ट होंगी। अब वो खेल रहे थे, वृंदावन की शोभा देख रहे थे। इतने में सब बालकों ने कहा, कन्हैया आज तो भूख लग आई हमको। अच्छा, भूख लग आई, तो ऐसा करो कि यहां पास में एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ यहां एक आंगिरस यज्ञ हो रहा है। दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक तो जिनमें पशुओं की हिंसा होती है और एक कोई बहुत पवित्र यज्ञ होते हैं। तो जिसमें पशु यज्ञ होते हैं उसमें तो अन्न नहीं लेना चाहिए। यहां आंगिरस यज्ञ हो रहा है, बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मवादी ब्राह्मण है और स्वर्ग काम्य या स्वर्ग की इच्छा से वे यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां जाओ और उनसे याचना करो, वे तुम्हारे भूख को दूर कर देंगे। ये छोटे छोटे बालक गए जहां यज्ञ हो रहा था, वहां जाकर के उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं श्रृणुते आप सुनो, हम श्री कृष्ण के आदेश से आपके पास आए हैं और पास में हम लोग गायें चरा रहे थे, हमको भूख लग आई, कुछ हमको खाने के लिए दोगे? तो वे ब्राह्मण देखे कि भाई अभी तो यज्ञ भगवान के भोग नहीं लगाया है, मंत्रियों और मंत्रों की आहुति अभी तक अग्नि में दी नहीं है, और उससे पहले ही यदि हम ये अन्न का दान देंगे तो भाई यज्ञ का निरादर होगा। अतएव वे कुछ बोले नहीं, हां बोले न ना बोले। वे बालक बेचारे वापस लौट आए, आकर के और कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण क्या बतावे, उन ब्राह्मणों ने तो हमको कुछ भी नहीं दिया, हां और ना कुछ भी नहीं बोले, तो हम भूखे भूखे वापिस आ गए। भगवान ने कहा, अरे तुम बहुत भोले हो, ये रोटी खिलाने का काम पुरुषों का नहीं है, ये भोजन देने का काम माताओं बहनों का है। जाओ तुम ब्राह्मणियों के पास जाओ और उनको मेरा नाम लेकर के बोलो, वे जाकर के वो तुम जाकर के उनको मेरा नाम लेके बोलोगे और अपनी भूख बताओगे तो वो भूख सह नहीं सकेंगे, तुमको बहुत अच्छा अन्न दे देंगे। अच्छी बात है। वे छोटे छोटे बालक गए जाकर के सीधी सीधे ढंग से बोल दिए कि हे ब्राह्मणियों हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारे वचन सुनो, हमको कृष्ण ने यहां भेजा है, वो गायें चरा रहे हैं, हम उनके सखा हैं, हमको भूख लग आई है, हमको कुछ खाने के लिए दीजिए। अरे कृष्ण यहां पास में ही है, गायें चरा रहा है? हां। और आपके पास हमको भेजा है? हमारे पास भेजा है? तो अच्छा ठीक है, तुम चलो और हम आ रहे हैं। सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियां बड़े बड़े थालों के अंदर चार प्रकार का अन्न, माने भक्ष्य है, भोज्य है, लेई है, चोष्य है, सब रख करके थालों के थाल सजा सजा करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आई। भगवान श्री कृष्ण को देखा कि आहा, आज तक तो हमने लोगों से सुनाई था कि कृष्ण का ऐसा रूप है, आज तो कृष्ण हमारे सामने उपस्थित है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुना नमाब्जम कर्णोत्पला लक कपोल मुखाब्जहासम। वे घन के समान श्याम वर्ण वाले और सोने की करधनी पहने हुए, वनमाला पहने हुए, तरह तरह के वृक्षों के फूलों को उन्होंने धारण किया है और एक हाथ से वे फूल को नचा रहे हैं और दूसरे हाथ को एक मित्र के कंधे के ऊपर रख रखा है, तिरछा उनका मुंह है और बड़े प्रेम से वे हमारी ओर देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। आज तक तो हमने केवल कानों से सुनकर के इनके रूप का एक निश्चय किया था और आज ये रूप हम आंखों से देख रहे हैं, कितना दिव्य रूप है। नहीं नहीं, ऐसे रूप को देख लो, बार बार मिलने का नहीं है, इसलिए देखते हैं फिर आंख बंद करते हैं, फिर खोलते हैं फिर आंख बंद करते हैं। ऐसे में ब्राह्मणियां भगवान के स्वरूप को अपने अंदर पी रही है। तो जिस प्रकार से चैतन्य को प्राप्त करके प्राज्ञम यथा विमतयो विजहुर नरेंद्र, जितनी अहम वृत्तियां हैं, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि सब, इन सब का जो परम प्रकाशक है प्राज्ञ या तुर्य, तुर्य में जाने पर जैसे सब लीन होने के बाद जागृत स्वप्न की सारी चिंताएं दूर हो जाती है, इसी प्रकार से कृष्ण को प्राप्त करने के बाद इनकी सारी चिंताएं सारी जलन दूर हो गई और बड़े प्रसन्नता से बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के पास आई और कहा और रूप को देखती रही। उनसे कुछ बोला नहीं गया ब्राह्मणियों से, तो फिर भगवान ने उनसे कहा कि आओ आओ ब्राह्मणियों स्वागत है आपका। हमारे मन में ये बात थी कि आप हमको देखना चाहते हो, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। बालकों की भूख थी देखने, बालकों को तो भूख थी और हमारे भूख थी और हमारे मन में इस बात की भूख थी कि तुम्हारे जो देखने की हमसे मिलने की भूख आ गई, वो भूख तुम्हारे तो रहती है थोड़ी और मेरे रहती है ज्यादा। भक्त के मन में जो मिलने की इच्छा होती है उससे ज्यादा इच्छा भगवान के मन में रहती है भक्त से मिलने की। अच्छा अब आप हम मिल लिए, अब आप अपने स्थान पर चले जाओ। ये जाने की बात सुनी तो वे बिचारी ब्राह्मणियां घबरा गई। उन्होंने कहा कि महाराज जाने का नाम मत लो, हम तो सबको छोड़ के आपके पास आए और आप जाने का नाम ले रहे हैं। अब तो महाराज हमको वहां यज्ञ में घुसने ही नहीं देंगे, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे और लोग। क्यों? वो कहेंगे किसके पूछ के गए, कहां गए, ये अन्न पहले क्यों दिया, न जाने कितने कितने मंत्र बोल करके हमको तो चुप कर देंगे, घुसने ही नहीं देंगे। इसलिए ना हम इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, आप तो हमको अपने पास ही रख लो। भगवान ने कहा देखो, जो मेरे पास आ जाता है वो फिर सबका प्रिय हो जाता है, उसके पास सब आने लग जाते हैं। पितृ भ्रातृ सुतादय, कोई आप में दोष नहीं देखेगा। और देखो एक बात और बताऊं, सदा ही शरीर से पास में रहना नहीं होता है, हृदय से पास में रहना, पास में रहना होता है। तुम हरदम मेरा ध्यान करो, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास हूं। और यदि पास में रहने पर भी तुम्हारा और हमारे मन में प्रेम नहीं है, तुम हमसे दूर हो और हम तुमसे दूर है, लेकिन दूर होने की बात नहीं, तुम तो हमारे पास ही हो, इसलिए चली जाओ। उनको भेज दिया, ये बिचारी वापिस आ गई, अपने पतियों के साथ में बैठ करके यज्ञ कराने लगी, यज्ञ की विधि पूरी करने लगी। ब्राह्मणों को मालूम चला कि अरे हम तो यज्ञ के फंदे में फंस गए, यहां तो यज्ञेश्वर आ गए थे, उनकी भी परवाह नहीं की, ये यज्ञ के मालिक है और हम यज्ञ के अंदर पड़े रहे। धिक्कार हमारे जन्म को, धिक्कार हमारी विद्या को, धिक्कार हमारे ज्ञान को, धिक्कार हमारे कुल को, और धिक्कार हमारे क्रियादाक्षम, क्रिया की निपुणता को। हमने भगवान को भगवान की दृष्टि से समझा नहीं। बड़े श्रेष्ठ हैं हमारी ये पत्नियां, जिन्होंने कोई अध्ययन भी नहीं किया है, कोई ये गुरुकुल में गए नहीं, और कोई इनका द्विजाति संस्कार नहीं हुआ, न तप, कोई तपस्या भी नहीं की, और नात्ममीमांसा, कोई आत्मचिंतन भी इनका कोई कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी ये कृष्ण के दर्शन करके आ गई है। अरे हम तो इतने में संतोष कर लेती है कि ऐसी पत्नियां हमको मिली है जो भगवान के दर्शन किए हुए हैं, हमारा जीवन इतने में ही संतुष्ट है, हम इतने में ही संतोष कर लेती है। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आप जहां भी हैं हमारा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी माया से मोहित होकर संसार में कर्म कीचड़ में फंसे हुए हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। परीक्षित, ब्राह्मण चाहते तो कंस के पास, कृष्ण के पास जा सकते थे, लेकिन कंस के भय से गए नहीं, क्योंकि कंस को इस बात की हरदम जानकारी मिलती रहती है कि कौन कौन कहां कहां जाते हैं। तो देखो ब्रह्मा के ऊपर विजय, अग्नि पर विजय, और साथ साथ में यहां अब यज्ञ के ऊपर भगवान की विजय हो गई। अब देखो एक विजय की कथा और है। भाई आप लोग बहुत भाग्यशाली है, आपने सभी भाग्यशाली है कि भगवान का ये पावन चरित्र सुन रहे हैं और दशम स्कंद का चरित्र सुन रहे हैं और रास लीला की तैयारी का प्रसंग सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, ये भगवान की दिव्य कथा है, इसलिए इन कथाओं को बड़े प्रेम के साथ सुनना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो एक बार नंद आदि जितने गोप थे वे एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ा भारी सामान इन्होंने इकट्ठा किया। वो सामान इसलिए इकट्ठा किया था कि इंद्र को प्रसन्न करना है। तो श्री कृष्ण ने आकर अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी देखो आप लोग के बीच में कोई गोपनीय बात नहीं हो तो आप बताइए कि इतना बड़ा ये यज्ञ का पदार्थ इकट्ठा किया है किसके लिए किया है, किम विचारित है, आपने क्या सोचा है, ये किसकी आराधना के लिए आपने इतना बड़ा उत्सव का ये पदार्थ संग्रह किया है। नंद जी कहने लगे कि देखो बेटा ये भगवान इंद्र हैं, इनकी पूजा करते हैं तब ये वर्षा करते हैं, वर्षा से हम लोगों को खेती में अन्न मिलता है, गायें भी पलते हैं, हम भी पलते हैं और सारे जीव जंतु पलते हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा ये सब इंद्र ही देता है कि हाँ इंद्र देता है। अच्छा इंद्र देने वाला है तो अपने यहां तो खूब वर्षा करता है, मारवाड़ में तो पूरी वर्षा नहीं करता, देखे क्या बात है, वहां वर्षा कम क्यों होती है। इसका अर्थ यही है बाबा, ये कर्म के द्वारा हमारे फल को देवता लोग देते हैं, हम यदि अच्छा कर्म करते हैं तो हमको ये इंद्र आदि अच्छा फल देते हैं, हम यदि अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो हमको अच्छा फल नहीं देते हैं। तो मनुष्य अपने कर्म के फल से जो पाता है वो देवता बिचारे क्या देंगे अपनी तरफ से, देवताओं में कोई इनमें शक्ति नहीं है। हम लोग अपने अपने स्वभाव से यहाँ जन्म लिए है तो हमारा काम खेती करने का है, वाणिज्य करने का है, गाय की रक्षा करने का है, ये हमारा काम है, ये हमारी वृत्ति है। इसलिए इस वृत्ति से जो हमको मिलता है, इस वृत्ति में हम जैसा पुण्य पूर्वक काम करते हैं तो बरसात होती है और धान मिलता है, और इस वृत्ति के करने में पाप करते हैं तो बरसात नहीं होती है। आप इंद्र को फालतू ही महत्व देते हो। और दूसरी बात देखी जाए तो यदि आपको ये यज्ञ करना हो इंद्र की प्रसन्नता के लिए मत करो, ये बरसात में तो पहाड़ कारण होते हैं, गोवर्धन के कारण से बरसात होती है। आप इंद्र को महत्व देने लग गए कि बेटा गोवर्धन के कारण से कैसे, कि देखो गोवर्धन पर्वत है कितना ऊंचा है, इसके ऊपर जो वृक्ष है तो बादल वृक्षों को देखकर बरसते हैं, तो वर्षा का कारण तो गोवर्धन पर्वत है। आप इंद्र को इतना महत्व मत दीजिए, हमारे कहने से आप एक बार रुक जाइए। क्या अच्छी बात, अब की बार हम गोवर्धन को ही इन सब पदार्थों से पूजित करेंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, जितना पदार्थ था सब इकट्ठा करके ले गए गोवर्धन पर्वत पर। भगवान के मन में थी कि इस इंद्र का अभिमान दूर हो जाए, तो अब वो सारा का सारा पदार्थ लेकर के वहां गोवर्धन पर्वत पर गए। अब वहां पर गए तो भगवान ने देखा कि कुछ चमत्कार दिखाए बिना कोई नमस्कार करता नहीं, चमत्कार कोई नमस्कार है, तो भगवान ने एक अपना एक दूसरा रूप बना करके और गोवर्धन पर्वत के एक जगह जाकर खड़े हो गए। कहने लगे ओ ब्रजवासियों, तुम्हारे पास जितनी चीज वस्तु है लाओ हमको दो, हम गोवर्धन पर्वत स्वयं मूर्तिमान होकर तुम्हारे पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे आवाज लगाई। भगवान ने कहा देखो 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 पिताजी, ये देखो गोवर्धन पर्वत स्वयं मांग रहा है ना, इसलिए दे दो इसको, जितना घी देना है, जितना गुड़ देना है, जितना खांड देना है। आ वो भगवान ऊपर मुंह फाड़ करके खड़े हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, भगवान सब चीज ले रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब इंद्र ने देखा कि हम तो ठन ठन पाल मदन गोपाल, हमको अब की बार ब्रज से कुछ भी नहीं मिला। तब इंद्र ने सांवर तक मेघों को बुलाया और कहा कि देखो जाओ ब्रज को डुबो दो तुम बरसात कर कर करे। एक ज्यादा बोलने वाले बच्चे के चक्र में आकर के नंद बाबा जैसे लोगों ने इतना बड़ा भारी अपराध किया, हमारा अपमान किया है, अब इनको पता चलेगा कि इस बालक की बात में आकर तुमने कितना नुकसान उठाया है, तुम जाओ जितनी वर्षा करो कर सको, ऐसा नहीं हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी वर्षा करना, सबको डुबो दो ब्रज को। क्या अच्छी बात। अब वो मेघ गए, बादल गए, खूब वहां पर जोर से बरसात होने लगी। अब वो देखते ही देखते लोगों के घरों में पानी घुस गया, छतों में पानी घुस गया। अब वो सब लोग घबराए, कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, हम कहां जावे। कृष्ण का आ जाओ अपने छकड़े ले लेकर, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ऐसा कह कह के भगवान ने अपने हाथ से उस गोवर्धन पर्वत को थोड़ा हिला करके ऊपर उठा लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया तो नीचे खाली जगह हो गई, खड्डा हो गया कि आ जाओ जितने इसमें आओ उतना, अब पानी बरस करके बाहर चला जाए। और सबको वे अंदर अपने ले आए पर्वत के नीचे, सबको आश्रय मिल गया। एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन सात दिन तक ये बरसात ऐसे होती रही, किसी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। तब इंद्र को होश आया कि भाई जो सात दिन तक सबको बचा सकता है तो वो सात महीने तक बचा सकता है, सात बरस तक जब बचा सकता है, सात कल्प तक बचा सकता है, सात ब्रह्मा तक बचा सकता है, इसके बचाने की कोई सीमा है। वो बेचारा चुप हो गया भाई, उसने बरसात बरसात सब बंद कर दी, सब बरसात बंद कर दी। फिर सूर्य के कारण से पानी सूख गया, काला कीचड़ सब सूख गया। भगवान ने कहा अब जाओ अपने अपने घरों में, तो सब अपने अपने घरों में चले गए। देवताओं ने धुंधवियां बजाई, फूलों की वर्षा की। देवताओं ने देखा कि आज इंद्र की हम सहायता नहीं करेंगे कोई, क्योंकि ये इंद्र भगवान का विरोधी हो गया, इसलिए हम सहायता नहीं करते हैं। जब आज इंद्र का मान भंग हुआ तो देवताओं के मन में बड़ी खुशी आई, बहुत अच्छा किया भगवान ने। अब ये सारे के सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के भगवान के विषय में नंद जी से पूछते हैं कि नंद जी ये आपका कोई बेटा है कि कोई बला है, क्या बात है कि क्यों जी, क्या अरे इसके विषय में सुनते हैं, ये देखो पूतना को देखो इसने मार दिया, शक्टासुर को मार दिया, तृणाव्रत को मार दिया, प्रलंबासुर को मार दिया, यमलार्जुन का उद्धार कर दिया, क्या क्या इसने काम किया, यमुना नदी का जल शुद्ध कर दिया, कालिया का दमन कर दिया, और अभी देखो ना आप, अभी देखते देखते इतना इंद्र का घमंड इन्होंने दूर कर दिया, क्या बात है। कहने लगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात है, एक बार गर्गाचार्य जी हमको मिले थे, उन्होंने जरूर हमको कहा था कि भाई ये कोई नारायण के समान बड़ा पराक्रमी होगा, ये कभी वसुदेव का बेटा रहा इसलिए लोग इसको वासुदेव कहेंगे, और जो महाभाग इससे प्रेम करेंगे वे कभी भी नरकों में नहीं जाएंगे, ऐसा तो हमने सुना था इनसे। इतने में ही ऊपर कानाफूसी होने लगी अंतरिक्ष में, इंद्र बेचारा घबराया और साथ में कामधेनु को लेकर आया। कामधेनु को लेकर के इंद्र आया और भगवान के चरणों में आकर गिर गया कि महाराज क्षमा करो क्षमा करो, आपका तो बड़ा दिव्य रूप है, आपने रजोगुण तमोगुण को जीत लिया है, आपके अंदर माया की ये लेश मात्र भी विकृति नहीं है, आप में काम क्रोध लोभ है ही नहीं, आप हमारे गुरु हैं, गुरुजनों को तो चाहिए कि वे अपने शिष्यों को दंड देवे, माता पिता का ये कर्तव्य है कि बालक को दंड देवे, हमारे जैसे मूर्खों को जो कि अपने आप को जगत का मालिक बना लिए, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है। महाराज, मैं त्रिलोकी का राजा होकर अपने घमंड में चूर हो गया, इस कारण से मैंने आपकी महिमा भुला दी, इसलिए महाराज क्षमा करो और जो भी दंड देना हो दो, मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, आप दीनानाथ हो कृपानाथ हो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान हंसते हुए बोले, अरे इंद्र, मेरी कृपा कभी कम होती है? मेरी कृपा कभी भी कम नहीं होती है, मैंने तो तुमसे मिलने के लिए ही ये सब कार्य किया था। देखो बिचारे ब्रह्मा जी एक घंटा तक स्तुति किए, उनको कुछ नहीं बोले, इंद्र ने थोड़ी देर स्तुति की तो उसके पीछे इतने बोलने लग गए भगवान, कारण कि ब्रह्मा जी ने तो अपने भक्तों से भगवान को अलग किया और इंद्र ने अलग हुए भक्तों को एक साथ मिला दिया, तो भगवान तो भक्तों के मिलने से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारे अंदर जो ऐश्वर्य का घमंड था उसको दूर करने के लिए ही मैंने ये कार्य किया है, अच्छा कोई बात नहीं, अब जाओ प्रसन्नता से जाओ और अब आगे ऐसा मत करना, और तुम्हारा जो अधिकार है उसमें तुम स्थित रहकर प्रजा का पालन करना। इतने में ही कामधेनु आई, कामधेनु का महाराज हम इंद्र को नहीं जानते, हम तो एक आपको जानते हैं, आप हमारे इंद्र हो, आप हमारे स्वामी हो, बड़ी कृपा की है महाराज। अब इंद्र ने कहा, महाराज मैं ऐरावत की सूंड में आकाश गंगा का जल लेकर के आया हूं, और कामधेनु का महाराज मेरा दूध है, अभिषेक करना हो तो दूध और जल से होना चाहिए, तो आज इंद्र और हम सब आपका अभिषेक करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अच्छी बात, लो बैठा हूं करो अभिषेक। अब वो जब इंद्र वर्षा करने लगा तो भगवान ने एक छांट नहीं लगने दी, और जब कह रहा है महाराज आपका अभिषेक करना चाहता हूं, लो करो, भगवान विराजमान हो गए। देवताओं ने देखा, नारद आदि ऋषियों ने देखा कि अरे अरे भगवान का अभिषेक हो रहा है, सब अपने अपने स्थान से आ गए, सब भगवान की स्तुति में खड़े हैं, और वहां पर ऐरावत के सूंड में लाया हुआ अमृत जल, वो गंगा जी का जल और कामधेनु का दूध, इन दोनों को मिला करके देवता लोग सब बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि मुनियों के साथ वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। वो क्या कीर्तन कर रहे हैं उसको आप सुन लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरे मुरारे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव
बड़े विलक्षण भाग्यशाली वे प्राणी हैं जिन्होंने भगवान के दिव्यातिदिव्य इस रास लीला में अपने को प्राप्त किया। बड़े पुण्यशाली हैं वे महानुभाव जिन्होंने इस पावन रास लीला को देखा और उन सब में सबसे बड़े भाग्यशाली हैं वे प्राणी जो ऐसे कलिकाल में इस रास के पावन प्रसंग को सुना है। रास में 5 अध्याय हैं और ये 5वां अध्याय 5 प्राण के समान है। जिस प्रकार शरीर में 5 प्राण रहते हैं तो शरीर जिंदा है, इसी प्रकार से भगवान के ये लीलाओं को बताने वाले अनुपम दिव्य 5 रास के अध्याय हैं, ये भी भगवान के इस पवित्र कथा जीवन में प्राणों का संचार कर रहे हैं। भगवान सर्वेश्वर हैं और भगवान ही इस रास के परम रसिक हैं। अतएव भगवान ने इस रास में ही प्रवेश करने के लिए और पर प्रवेश कराने के लिए सब पर अपनी विजय प्राप्त की है। माने रास में भगवान तब प्रवेश करते हैं जब वे ब्रह्मा पर, जब वे इंद्र पर, जब वे यज्ञ आदि समस्त अनुष्ठानों पर और सभी प्राणियों पर अपना विलक्षण प्रभाव जमा सकते हैं और इसी कारण से भगवान को रास लीला का पूर्ण अधिकार है। भगवान ने अपनी विशेष प्रेम की लीला को विशेष प्रेमियों के समक्ष खुलकर के जो बताया है वही रास है। वैसे रस है वो भगवान का स्वरूप है, रसो वही सह, वही रस है जो कयों में विभक्त होकर और अभिन्न भाव से रहकर अपने पास सबको बुलाता है और अपने से सबको रस देता है। इससे एक विलक्षण रास पैदा होता है। उसी रास के अनुष्ठान के क्रम में इंद्र पर विजय प्राप्त करने के बाद ऐरावत के द्वारा जब इंद्र आकाश गंगा से पावन जल लेकर आए हैं, कामधेनु का दूध प्राप्त किया है और उसके बाद सब ऋषियों के देवताओं के बीच में भगवान का अभिषेक किया है तो सब देवता ऋषि इंद्र आदि सभी भगवान की इस झांकी का पावन दर्शन किए हैं और फिर सब अपने अपने धाम में चले गए हैं। एक दिन की बात है, एकादशी का पर्व था, नंद बाबा उस दिन निराहार रहे और रात्रि में द्वादशी की घड़ियां बीत रही थी, द्वादशी की घड़ियां लग चुकी थी तो ऐसे समय में कहीं द्वादशी की घड़ियां बीत न जाए। वे रात्रि में स्नान करने के लिए यमुना नदी में गए तो वरुण देवता के पहरेदारों ने देखा कि आसुरी वेला है, इस वेला में नंद जी को स्नान नहीं करना चाहिए। उन्होंने नंद जी का अपराध समझा और नंद बाबा को पकड़ करके वे वरुण जी के पास ले गए, अपने स्वामी के पास ले गए। इधर सब जगह कोहराम मच गया, सब बड़े चिंतित हो गए, नंद जी कहाँ गए कहाँ गए। तो भगवान ने जब ये जाना कि वरुण के सैनिक उनके वरुण देवता के पास ले गए हैं, तो आत्मीय लोगों को सर्वथा निर्भय करने वाले भगवान जल में कूद करके सीधे वरुण देवता के वहां पहुंचे। वरुण देवता ने देखा कि आज हमारे यहां स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर पधारे हैं, तो बड़ा भारी उनका स्वागत किया, बड़ी भारी पूजा की। और इतना ही नहीं, तद दर्शन महोत्सव है, भगवान के दर्शन करके बड़ा आनंद का अनुभव किया। वरुण ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, आज मेरा ये वरुण होना सफल हो गया, मेरे सैनिकों ने अपराध जरूर किया है, परंतु एक दृष्टि से बड़ा अच्छा काम किया, आज आपके पावन दर्शन हो गए। आज ये बात सत्य हो चुकी कि आपके भक्तों के दर्शन के कारण से ही आपके दर्शन होते हैं। यदि नंद बाबा को यहां हमारे सैनिक लेकर नहीं आते तो आपके दर्शन हमको नहीं होते। अजानता मामकेन, ये मैं मानता हूं कि मेरे सैनिकों ने यह कार्य अच्छा नहीं किया है, नंद जी को बेकसूर यहां ले आए हैं, आप हमारे इस अपराध को क्षमा करेंगे। और हे गोविंद, नियतामेष ते पिता, आप अपने पिताश्री को ले जाइए और हमें भी आप कृपा दृष्टि से देख लीजिए। भगवान तो भाई ईश्वरों के ईश्वर है परीक्षित, उनकी स्तुतियों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी को लेकर वापस वे ब्रज में आए और उसी प्रकार भगवान तो खेल कूद में लग गए। अब नंद जी का दिमाग और का और हो गया। चौपाल में नंद जी के बराबर की आयु वाले बड़े बूढ़े सब बैठे हुए थे। उनके बीच में नंद जी से पूछा गया कि नंद जी, आप कहाँ गए थे? आजकल आपकी आंखें बंद सी रहती है, कुछ समाधि किसी स्थिति रहती है, बात क्या है? नंद जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं तो अब तक अपना बेटा मानता था इस कृष्ण को, यह कृष्ण तो बड़ा विलक्षण है, लोकपाल महोदयम, क्या बतावें, वरुण के पास जब मुझे ले जाया गया, इतना विलक्षण वैभव वरुण का, इतनी शक्ति, इतना पराक्रम, इतना ऐश्वर्य, वो भी मेरे बेटे के सामने नतमस्तक होकर रहा, इनकी आज्ञा पालने के लिए वो तत्पर था, इनके संकल्प के विपरीत कुछ भी करने का उसमें साहस नहीं था, क्या बतावे। अब मैं सोच रहा हूं कि कृष्ण क्या चीज है, मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं इस कृष्ण के विषय में ही सोच रहा हूं ये क्या है। ध्यान देवे, उस समय में बड़े बूढ़े सब गोपों के मन में आया कि ओहो, नंद जी पर तो इतनी कृपा की है, क्या कभी संपूर्ण हृदयों में रहने वाले ये श्री कृष्ण हमारी भी बात सुनेंगे, क्या वो हमको दिव्याति दिव्य लोक दिखा सकते हैं, जिस लोक में जाने के बाद कभी प्राणी आता नहीं है, जिसमें जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने जन्मों से तपस्या करते हैं, फिर भी वो लोग दुर्लभ रहता है, हमारे जैसे ग्रामीण जीवन में रहने वालों के लिए वह लोग सर्वथा असंभव है, क्या हम पर भी कृष्ण कृपा कर सकता है, ऐसे उन सब के मन में बात आई। तो परीक्षित, भगवान अखिल दृक्, भगवान सबको देखने वाले हैं। भगवान ने देखा कि बेचारे ये लोग मेरे से ऐसी आशा किए हुए हैं, और जो भक्त मुझसे कुछ भी आशा रखते हैं उनकी आशाओं को पूरा करने में तो मुझे आनंद का अनुभव होता ही है। ऐसा विचार करके भगवान ने उन सब का संकल्प सिद्ध किया। अविद्या के अंदर फंसे हुए प्राणियों के लिए, तरह तरह कामना के कीचड़ में डूबे हुए प्राणियों के लिए जो लोग सर्वथा दुर्लभ है, महाकारुणिक हरि ने उन समस्त ब्रजवासियों को वह लोक दिखाया जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। और हे परीक्षित, वो ऐसा लोक है जहां सनातन ब्रह्म की हरदम स्थिति रहती है। वे सब के सब बाल सखा भगवान के जितने परिजन, ज्ञातिजन, नातिजन और भी ब्रजवासी थे, उन सब ने ऐसा अनुभव किया कि हम एक दिव्य लोक में आए हैं। सच पूछा जाए तो वो तो एक ब्रह्म हृदय था। ब्रह्म और हृदय दो नहीं है, जल और तालाब। उसमें तालाब को हम एक खड्डा कह सकते हैं, जल उसमें आया हुआ ऐसा कह सकते हैं, परंतु वहां अधिष्ठान और अधिष्ठित दो नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और वो रसात्मक ब्रह्म है, अतः उसे ब्रह्म हृदय कहते हैं। ऐसा विलक्षण ब्रह्मानुभव हुआ। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वैकुंठ भगवान का उस भगवान का जो वैकुंठ लोक है उसका उन्होंने दिव्य दर्शन किया। सनातनम, वो जो सनातन है, प्रकाशमान है, वहां उन लोगों ने देखा कि कन्हैया तो वही है जो यहां हमारे साथ खेलता था और इस लोक के अंदर एक ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसकी सब देवता पूजा करते हैं, सबके द्वारा पूजित है। इसके पास सुदर्शन चक्र है, इसके पास गरुड़ है, इसके पास गदा है, चार इसकी भुजा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कहा, कन्हैया क्या तुम हमारे साथ खेलने नहीं चलोगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहां कन्हैया खेलने के लिए नहीं जाएगा। इस समय में यह सब लोकपालों का लोकपाल है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाएगा। तो क्या कन्हैया तुम हमारे साथ बैठकर बंसुरी नहीं बजाओगे? क्या तुम माखन चोरी नहीं करोगे? क्या तुम जंगल में गौवे नहीं चराओगे? सब बातों का उत्तर जब नहीं मिला तो उन सब ने विचार किया कि इससे तो अच्छा हमारा ब्रज है जहां हम सदा ही भगवान का अंग संग, कृष्ण का अंग संग प्राप्त किए हैं। इनकी दृष्टि हमारे पर उस समय जमी रहती है, हमसे ये खेलने के लिए नोहरा करता है। यहां हमारे बार बार बुलाने पर भी ये टस से मस नहीं होता है, चलो हमको तो ब्रज में ही ले चलो, इस बैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं है। तब नंदा अदय स्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता। ये नंद बाबा वगैरह भी देखे कि भाई यहाँ तो हरदम हमारी गोद में रहता है, खेलता है, और यहाँ हमसे इसको बात करने की फुर्सत नहीं, चलो हमारे ब्रज में ही हम चलते हैं। तो सबके ब्रज जाने की इच्छा हुई तो थोड़ी देर में उन सब ने देखा कि हम तो ब्रज में ही बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सब ब्रज में आए और भगवान के साथ वे खेलने लग गए। इस प्रकार की भगवान की पावन लीलाएं हैं। और अब अगले अध्याय में भगवान की पावन रास लीलाओं का वर्णन है। तो देखो, जो भगवान ब्रह्मलोक पर, इंद्रलोक पर, वरुण लोक पर, और इतना ही नहीं, जो वैकुंठ लोक पर भी विजय प्राप्त किए हैं, वे भगवान अब दिव्याति दिव्य रास का आयोजन इसी ब्रज में करेंगे, अपने संकल्पों से करेंगे, भगवान की विशेष कृपा से। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत अब भगवान की एक दिव्याति दिव्य लीला है, उसका प्रसंग कहा जा रहा है। भगवान की यूं तो सभी लीलाएं दिव्य होती है, परंतु कभी कभी विशेष रूप से भगवान के संकल्प में जो लीला बैठती है वह लीला और भी दिव्य हो जाती है। सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी में अब रास लीला का वर्णन कर रहे हैं। रास लीला में सबसे पहला शब्द भगवान नाम दिया है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित है।
भगवान ने इधर क्या हुआ कि अपने मन से रात्रियों का निर्माण किया। भगवान ने अपना मन बनाया, क्यों बनाया कि रंतुम एक विशेष प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए बनाया। भगवान के हृदय में तो प्रेम प्रदान करना, प्रेम लेना, ये तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से भाव रहता है। और जिन गोपियों ने भगवान की आराधना के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की उपासना की थी, अब वे ही भगवान एक विशेष लीला के लिए विशेष मन बनावे, इससे हम समझ सकते हैं कि यह लीला और सब लीलाओं में बड़ी विचित्र है। इसमें एक एक पात्र है वो भगवान का संकल्प है, वही मूर्त होकर आया है। वो रात्रि का समय, वो स्थान, और इसमें प्रेम के जितने पात्र हैं वे सब के सब भगवान के दिव्य संकल्प से पैदा हुए हैं। शरद ऋतु का समय है, इस शरद ऋतु के समय में तरह तरह के वृक्ष खिले हुए हैं, लताएं खिली हुई है, और इस रात्रि में दूर दूर तक चंद्रमा की किरणों से और शीतल हवा से लोगों के मन में बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। यह रात्रि शरद ऋतु की रात्रि है, माने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा इस समय में अपने समस्त कलाओं के साथ उगा हुआ है। आज चंद्रमा को भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल में जन्म लेकर हमारा यश बढ़ाने वाले भगवान आज हमारी किरणों के बीच में एक दिव्य लीला करने जा रहे हैं। ऐसी शीतल किरणें चंद्रमा की फैल रही है कि जिससे मनुष्यों का सारा शोक दूर हो गया है। वह चंद्रमंडल पूर्ण है, अखंड है। चंद्रमंडल भी लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी के मुख के समान शोभायमान है। और इस वन के अंदर जहां इतनी सुगंधी आ रही है, बड़ा ठंडा वातावरण है, न तो गर्मी है न अतिशय शैत्य है, ऐसे इस वन के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। और वनंच तत्कोमलगो विरंजितम, उस समय में वन की जितनी बालुका है वो बहुत शीतल बालुका है, बड़ी कोमल है। ऐसे वन में भगवान ने प्रवेश किया और वहां अपनी बांसुरी होठों पर रखी और एक क्लीम, जो बीज मंत्र है, प्रेम का बीज मंत्र है, उस क्लीम को लेकर उन्होंने एक तान छोड़ी, माने एक ऐसा बंसुरी नाद किया उन्होंने कि उस शब्द के अंदर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि जो प्रेम करना नहीं जानते थे उनके हृदय में भी प्रेम का भाव उदित हो गया। व्रज की स्त्रियां तो श्री कृष्ण के ऊपर अपने आप को न्योछावर की हुई थी ही, उन्होंने बांसुरी नाद सुना तो वे सब अपने घरों से निकली आई। उस समय में उनके आभूषण हिल रहे थे, जबलूल कुंडला, कानों के आभूषण थे वो हिल रहे थे, और वे बड़ी संभ्रम के साथ, बड़ी उतावली के साथ वे रवाना हुई। उनके बस की बात नहीं थी कि वे अपना काम पूरा करके जाती, ऐसा लगा कि कोई हमको बरबस खींच रहा है। जो कोई गाय दू रही थी उसने दूहना छोड़ दिया, और किसी ने दूध गर्म था उसको उतारने के लिए हाथ बढ़ाए थे, और जो ही बांसुरी का नाद सुना वो है जैसी रवाना हो गई। कोई अपने आभूषणों को पहन रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई पतियों की सेवा कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई बालकों को दूध पिला रही थी, कोई घर को लीप रही थी, कोई अंजन लगा रही थी। सब का जहां जहां जो जो काम था वो काम एकदम छूट गया, और बड़े उत्सुकता के साथ वे सारी की सारी गोपियां कृष्णांतिकम ययुः श्री कृष्ण के पास में जंगल में चली गईं। उनमें बहुत सी गोपियों को भाइयों ने मना किया, पिताओं ने मना किया, पतियों ने मना किया, और अपने सगे संबंधियों ने मना किया कि रात्रि के समय में और इतने उतावलेपन से बेसुध होकर तुम कहां जा रही हो। लेकिन उत्तर देवे तो भाई उत्तर तो वो देगा जो सुनेगा, उत्तर वो देगा कि जिसने कोई सुनकर के धारण किया है और अपने मन से सोचेगा तो उत्तर देगा। उन सुनने वाली गोपियों का मन तो कृष्ण की बांसुरी में चला गया, तो उनका प्रश्न सुने कौन? उनका मन भी वही है, उनकी इंद्रियां भी वही है, तो अब क्या करें? वो न तो कुछ बोली और न उन्होंने कुछ सुना। वे सब के सब गोविंदा परितात्मान है, गोविंद ने ऐसा उनके मन को खींच लिया था कि किसी को कुछ भी पता नहीं कि मुझे कोई मना कर रहे हैं। वे लौटी नहीं और सीधी चली गई। कई कई ऐसी गोपियां थी जिनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। कहां जा रही हूं? कुछ नहीं आवाज आई तो दौड़ करके दरवाजा बंद कर दिया, कमरे में ले जाकर उनको रख दिया, नहीं जा सकती रात्रि में। अब उनको ये पता नहीं कि ये किनके प्रेम में है, कमरा बंद कर दिया। तो मन ही मन से श्री कृष्ण का ध्यान किया, कृष्ण के प्रेम के अंदर इतनी पागल हो गई और मिलने की इच्छा से इतनी घबराई कि उस समय में उनके सारे पाप पुण्य नष्ट हो गए। माने जो घबराहट पैदा हुई, वियोग की अग्नि उनके अंदर जगी, उससे तो सारे पाप नष्ट हो गए। और ध्यान के अंदर श्री कृष्ण के साथ हमारा मिलना हो रहा है ऐसा उनको अनुभव हुआ, तो इससे महान सुख मिला, तो इससे उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। इस प्रकार से पाप और पुण्य के नष्ट हो जाने के कारण उनके सारे बंधन समाप्त हो गए, उनका कल्याण हो गया। परीक्षित, इन गोपियों ने तो इन श्री कृष्ण भगवान को अपना पति माना है, लेकिन कृष्ण के साथ संबंध करने के कारण उनका गुणमय देह से संबंध विच्छेद हो गया, उनके सारे बंधन क्षीण हो गए और वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। राजा पूछते हैं कि कृष्ण को कृष्ण रूप से समझें, भगवान रूप से समझें और उनसे प्यार करें, तब तो कल्याण हो जाए, आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु इन्होंने न तो ब्रह्मतया मुने, श्री कृष्ण को ब्रह्म तो माना ही नहीं, परमात्मा माना ही नहीं, उन्होंने तो अपना कांत माना था, अपना पति माना था। और जैसे सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे में प्रेम किए हुए रहते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण को एक गुणमय देह वाला माना, तो उनका गुणों से उपराम कैसे हो गया गोपियों का? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुमसे पहले कहकर के आया हूं कि भगवान के स्वरूप को चाहे कोई गुणवान माने तो अभी वो गुणवान वास्तव में तो है नहीं, उनकी बुद्धि निर्गुण हो ही जाती है, क्योंकि भगवान है ही ऐसे। भगवान एक ऐसे हैं कि वे भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं, संदेह नहीं है। रखते हुए भी भगवान में ऐसी भगवत्ता है कि जहां से वो भक्त चलता है उसको उससे नीचे नहीं गिरने देते। भगवान के साथ द्वेष करता है, प्रेम करता है, राग करता है, उनको पति भी मानता है, उनके साथ में द्विषन अपि द्वेष करता हुआ भी वो द्वेष करके और पतन को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान एक ऐसे ही है कि उनके साथ जुड़ जाता है उसका भगवान उत्थान ही उत्थान करते हैं। कामना है, क्रोध है, भय है, स्नेह है, प्रेम है, सौहार्द है, ये यदि भगवान के साथ किया जाता है तो वो करने वाला भगवानमय हो जाता है। तो तुमको कोई ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि गोपियों ने तो अपना पति माना था, जैसे सामान्य स्त्रियां पतियों में प्रेम करती हैं ऐसे ही कृष्ण के साथ उन्होंने प्रेम किया, और इतने मात्र से उनका कल्याण क्यों हो गया? क्योंकि सामान्य मनुष्यों के समान लीला तो कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन स्वयं सामान्य मनुष्यों के समान है नहीं, उनसे बड़े दिव्य है। योगेश्वरेश्वरे कृष्ण, श्री कृष्ण क्या है? सारे योगों के स्वामी हैं, सारे योगियों के स्वामियों के भी स्वामी हैं, योगों के स्वामी हैं बड़े बड़े संत महात्मा, और उनके भी स्वामी है भगवान। अतः जो संसार में विकृति देखते हैं वो कृष्ण में बिल्कुल मत देखो। तो वे सारी की सारी ब्रजांगनाएं, ब्रज की स्त्रियां हजारों की संख्या में आ गई कृष्ण के पास में। जो कृष्ण के पास आई, चारों तरफ से घेर लिया कृष्ण को, जंगल के अंदर बैठे हुए कृष्ण, और चारों तरफ आकर के गोपियों ने घेर लिया और भगवान भी उनके बीच में बैठे हुए हैं। अब भगवान एक ऐसी जादू भरी बात बोलते हैं कि जिसके दोनों अर्थ निकलते हैं। वाचा पेशैर विमोहयन, वे ऐसे ऐसा वाग्जाल फैलाते हैं कि सब मोहित हो जाते हैं। देखो भगवान का वाग्जाल बड़ा विचित्र है, उनकी वाणी में ऐसे अक्षर आए हुए हैं कि सब प्रकार का अर्थ निकलता है। भगवान ने कहा, स्वागत है, स्वागत है आप लोगों का, आप महाभाग हैं, बहुत बड़ा भाग्य है आपका। गोपियों प्रियम किम करवाणी, वह आपका कौन सा मैं प्रिय कार्य करूं? जैसे कोई अतिथि होता है, वो किसी के घर पर पहुंचता है तो पहुंचने वाले को वो निहाल करता है, इस प्रकार से गोपियां भगवान के पास पहुंची हैं तो भगवान को निहाल कर दिया उन्होंने कि बोलिए हम आपका क्या स्वागत करें, आप कोई घबरा करके तो नहीं आई हैं, व्रज में सब शांति तो है, बोलिए आपके आने का कारण क्या है? देखो ये रात है, बड़ी भयंकर है, और भयंकर भयंकर प्राणी इस समय में रात्रि में सबको डराते हैं, खाते हैं, सबके प्राण इस समय में संकट में पड़ जाया करते हैं। तो आप लोग जाओ ब्रज में, वापस चले जाओ, यहां मत ठहरो। तो कहा ये क्या कहते हो? भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। भगवान ने कहा, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम देह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। हम कह रहे हैं ना आपको कि ये घोर रात्रि है, इसमें यहां मत रहो। तो कई स्त्रियां खड़ी हो गई, कह लगे ऐसे कैसे बोलते हो? अरे भाई ठहरो, हमारे वाणी का अर्थ निकालो भाई। रजनी ऐसा अघोर रूपा, ये हमारी रात्रि है, अघोर रूपा माने बहुत अच्छी रात्रि है, कोई यहां पर घोर है ही नहीं, कोई डरने की बात ही नहीं, और अघोर सत्व निषेविता, और कोई घोर प्राणियों के द्वारा ये रात्रि सेवित नहीं है, बड़ी अच्छी रात्रि है और किसी प्राणी से डरने की जरूरत नहीं है। और प्रतियात न वज्रम आओ न व्रजम, आप व्रज की ओर मत जाओ, यह स्थेयम यही ठहरे रहो, मैं तो आपको ये कह रहा हूं। ऐसे भगवान उनको दोनों तरफ की बात कह देते हैं। कहते हैं देखो तुमको भाई बंधु पुत्र ये सब के सब पतिलोग तुमको ढूंढ रहे हैं और भाई बंधुओं को परिवार के लोगों को संकट में डालना ये अच्छा नहीं है। जंगल आपने देख ही लिया है, चंद्रमा कितना अच्छा प्रकाशित हो रहा है ये देख लिया, यमुना का पुल है वो कितना सुगंधित है, शीतल वायु से कैसा ठंडा ये सब तुमने देख लिया, अब जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। देखो इसमें बड़े बड़े विद्वानों के तरह तरह के मत है, परंतु आपने तो सुखदेव जी के शब्दों पर विचार करें कि भगवान मोहित करते हुए बोलते हैं। भगवान बताते हैं कि हे सखियों, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ तुम्हारा परिवार है, एक तरफ हमारा यमुना नदी का पुल है, एक तरफ तुम्हारा घर है, अब तुम उसके बीच में आई हो, तुमको उधर जाना है या हमारे पास रहना है। ऐसे वो मोहित करते हुए कहते हैं कि भाई उधर जाओ, तुमको भाई बंधु पति आदि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे कारण से तुम यदि यहां आई हो तो मेरे से तो मिलना हो गया, आप चली जाओ। भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे से मिलना क्या होता है, इस बात को ये जानती भी है कि नहीं। तो भाई मेरे से तो मिलना हो गया, अब आपको यहां से चला जाना चाहिए, पतियों की सेवा करनी चाहिए और पति के नाते भाई बंधुओं की, पति के भाई बंधुओं की सेवा करनी चाहिए। और हे गोपियों, जिस स्त्री का पति दुशील है, भाग्यहीन है, बूढ़ा है, मूर्ख है, रोगी है, गरीब है, ऐसे पति की भी सेवा स्त्री के द्वारा त्यागनी नहीं चाहिए, उसकी भी सेवा करनी चाहिए। और भाई अपने पति के अतिरिक्त और किसी में भी पतिभाव रखोगी तो ये औपपत्य दोष लगेगा, कुलांगनाओं के लिए औपपत्य दोष महान कलंक की बात है। न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, न तुमको यश मिलेगा, न यहां शांति, यहां शांति मिलेगी, न परलोक में शांति मिलेगी। इसलिए जाओ, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरा दर्शन कर लिया तुमने, अब ध्यान में मेरा दर्शन करती रहो। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाते ततो गृहान, और अपने अपने घर की ओर लौट चलो। ऐसी अप्रिय बात उन्होंने सुनी, विषन्ना भग्न संकल्पाश चिंता मापु दुरत्ययाम, उनको बड़ी चिंता लग गई गोपियों को कि ये वापिस जाने की बात कैसे कह रहे हैं। वे नीचा मुख किए हुए हैं, श्वास ले रही हैं और उनके बिंबाधर हैं, मानो होठ है, वो होठ उनके फड़कने लग गए हैं, सूख गए हैं, चरणों से वो पृथ्वी को लिख रही हैं, मानो खोद रही हैं, आंसुओं से उनका सारा कपड़ा गीला हो गया है और छाती में बहुत बड़ा भारी कष्ट हो गया हो, इस प्रकार से वे बड़े दुखी हो गई हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि जाना आना और रहना तो अपने प्रेमी के पास होता है, माना कि हमारे स्त्री पुत्र भाई बंधु इन सब के साथ प्रेम है तो वे हमारे प्रिय हैं, लेकिन कन्हैया तुम तो हमारे प्रेष्ठ हो। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम तीन कोटियां हैं प्रेम की, तो तुम तो हमारे प्रेष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम, तुम तो हमारे प्रेष्ठ हो, प्रियतम हो, तुमसे श्रेष्ठ हमारे लिए कोई दूसरा प्रेमी नहीं है, इतना प्रेम लेकर के हम तुम्हारे पास आई और तुम एक तरह से प्रियतरमिव, जैसा किसी के साथ प्रेम हो ही नहीं इस ढंग से बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो हमने हमारे सारे काम न्योछावर कर दिए और तुम ही जाने की बात कह रहे हो। ऐसा दुख ली हुई वे गोपियां रोने लग गई और सिसकियां मार मार के जब रो रही हैं, तब उन्होंने आंसू पूछा अपना और आंसू पूछ करके गदगद गिरह कहते हैं बहुत ही गदगद वाणी में भगवान पर अनुराग रखने वाली कहने लगी। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, हम लोगों की परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आइंदा परीक्षा के लिए भी ऐसा कठिन प्रश्न पत्र मत देना। आप हमारे लिए ये कह रहे हैं कि तुम यहां से चली जाओ, क्या हम यूं ही हैं? सारे संसार का त्याग करके हम तुम्हारे चरणों के अंदर आई हैं और यहां से भी आप जाने का नाम ले रहे हो तो हमारी क्या दशा होगी? हमने सुना था कि आदि पुरुष भगवान नारायण अपने भक्तों के साथ प्रेम किया करते हैं, तुम उस आदि नारायण के स्वभाव को जानो और उसके अनुसार हमसे प्रेम करो। तुमने कहा कि पतियों से, पुत्रों से, भाई बंधुओं से प्रेम करोगे तो ये स्त्री का धर्म पूरा होगा, तो ये तो उन स्त्रियों के लिए चाहिए जिनको धर्म के द्वारा ऊंचा लोक चाहिए। हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण केवल तुम ही चाहिए, हम तो केवल तुमको ही चाहती है और तुम हमको प्राप्त हो गए, हम तुमको प्राप्त हो गए, अब जाने की बात क्यों कहते हो? त्वयि इसे प्रेष्ठ भवान, आपके अंदर जब हमारा प्रेम हो चुका है और हमने आपको अपना प्रेष्ठ बना लिया है तो अब ये जाने की बात हमारे हृदय में शूल पैदा कर रही है। आप कहते हो कि अपने भाई बंधुओं से प्रेम करो, हमने एक जन्म से नहीं जन्म जन्मांतरों से इनसे प्रेम किया है, परंतु आप बता सकते हैं कि पति से, पुत्र से, भाई से, स्त्री से, माता से, पिता से प्रेम करने पर क्या ये हमारे सारी दुख दर्द और बाधाओं को समाप्त कर देंगे? नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर तुम प्रसन्न हो जाओ, हमारी आशा लता के ऊपर किसी प्रकार से कुठाराघात मत करो। हे कमल नेत्र, तुम हमें अपने पास ही रहने दो। तुम कहते हो कि चले जाओ, अब बताओ कृष्ण, हमारी भी कुछ न कुछ मजबूरियां हैं, जाएंगे तो पैर काम आएंगे और घर में जाकर काम करेंगे तो हमारे हाथों से काम होगा, और इंद्रियां कब काम करती है? जब इंद्रियों के साथ में मन लगा रहता है। हमारा मन तुम्हारे पास है, अब वो मन चरण के साथ नहीं जुड़ेगा तो पैर चलेंगे नहीं, मन हाथ के साथ नहीं जुड़ेगा तो काम होगा नहीं। हमको तुम वहां ब्रज में भेज करके भी कौन सा काम करवा लोगे? मन तो तुम्हारे पास रहेगा, और कोई हमने मन अपनी मर्जी से थोड़ा ही रखा है। भवता अपरितम, आपने चोर लिया है, आप चोर हो। बाल्यावस्था में माखन की चोरी की, थोड़े से बड़े हुए तो हमारा चित्त तुमने चोर लिया है। अब बताओ, या तो वो मन हमको वापिस दे दो और फिर कह दो कि चले जाओ तो हमारी चीज लेके हम चले जाए। हमारी चीज तो पड़ी तुम्हारे पास है, कि तुम यहां से चले जाओ। क्यों चले जाए? नहीं जाते हम। तो कोई जाने का उपाय है कि कृष्ण जाने की बात क्यों कहते हो? जितने उपाय रचने हो वो रहने के उपाय बनाओ। एक बार भी तुम्हारा अधरामृत का हम लोग पान कर लेती तो हम हमारे हृदय की वेदना को समाप्त कर लेती। एक बार भी अपने तिरछे नैनों से हमको देखकर तुम हंस लेते तो हमारे हृदय की जो तुमसे मिलने की इच्छा है वो पूरी हो जाती। हासावलोक कलगी तदरिच्छयाग्नि, हमारे मन में जो तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है वो भी तुम ही ने पैदा की है। सारा का सारा दोष तुम्हारे पर है और धर्म का उपदेश तुम हमारे को दे रहे हो, हमें दे रहे हो। तुम देखो कैसे हंसे, कैसी सुंदर बांसुरी बजाए और कैसा तुमने ये दिव्य रूप बनाया है, कैसे बढ़िया वातावरण में तुम आकर बैठे हो और अब कहते हो चले जाओ। देखो देखो कन्हैया, जाने का नाम लोगे तो फिर तुमको ये सुनने को मिलेगा कि ये गोपी भी जल करके मर गई, ये गोपी भी जल करके मर गई, हम सब तुम्हारे प्रेम के विरह की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। कौन तो ध्यान करेगा और कौन घर का काम करेगा और कौन धर्म करेगा, कौन पति पुत्रों की सेवा करेगा। आप ऐसा मत समझो कि आपके चरणों में हम ही प्रेम करने वाली कोई हमारा ही कसूर है। अरे कमल नेत्र, तुम्हारे चरण है जो कि जंगल के अंदर खूब घूमते हैं, इन सब इन चरणों के साथ सब प्रेम करते हैं। अस्प्राक्ष्म तत् प्रवृत्ति नान्य समक्षमंग स्थातुम त्वया भी रमिता बत पा रहे आम है। स्वयं लक्ष्मी जी भी इन चरणों से प्रेम करती है, एक क्षण भी प्रेम कर लेती है तो वो भी इसको नहीं छोड़ती है। सुना है कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, किसी के पास भी न अन्य समक्षम स्थातुम, किसी के पास भी ठहरती नहीं है। लक्ष्मी बहुत चंचल है, लेकिन वो भी जब त्वया भी रमिता, जब वो तुम्हारे पास में आ गई तो तत्प्रवृत्ति, तब से उसने आपको छोड़ा नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने तो लक्ष्मी जी को तो नहीं कहा कि तुम चली जाओ, तुमको सब चाहते हैं तुम वहां चले जाओ, हमको क्यों कह रहे हो? कि लक्ष्मी जी को कौन चाहता है, कि लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता है बताओ? ब्रह्मा नहीं चाहते, कि इंद्र नहीं चाहते, कि कौन नहीं चाहते हैं? देखो कृष्ण लक्ष्मी के लिए सब आराधना करते हैं, ब्रह्मा आदि भी, लेकिन लक्ष्मी जी ने उनकी आराधना को स्वीकार नहीं किया और आपके चरणों के साथ प्रेम किया। और साथ ही साथ इस लक्ष्मी ने तुलसी के साथ थोड़ा द्वेष किया, क्या रे तुलसी, तुझे तो उसके चरणों में रहने का स्थान मिला है, मुझे तो कृष्ण का वक्षस्थल मिला है, और तुझे चरण मिल गए तो तेरी जगह मैं आकर रहूंगी। तो वक्षस्थल में निवास स्थान प्राप्त करके भी लक्ष्मी को संतोष नहीं, वो चरणों में ही रहना चाहती है। बताओ लक्ष्मी को आपने जब दूर नहीं किया, तुलसी को दूर नहीं किया, उन सब को दासी बना करके आप रखे, तो हे कृष्ण हम लोगों का ऐसा कौन सा अन्याय था, पाप था कि तुम हमको अपने पास में रखना नहीं चाहते हो? इसलिए हे पापहारी कृष्ण, हम अपनी सारी बस्ती को छोड़कर, सारे परिवारजनों से प्रेम छोड़कर तुम्हारे चरणों में आकर के हमने निवास स्थान प्राप्त किया है। हे पुरुष भूषण, तुम अपने सुंदर मुस्कुराते हुए मुख से हमें बड़े शांति के साथ, प्रेम के साथ कहो कि तुम यहीं रहो, हमारा संताप दूर होगा, तुम हमें अपनी दासी बना लो। तुम्हारा वो घुंघरालू बालों से घिरा हुआ मुख कमल, ऐसी विलक्षण उसकी शोभा, और उसमें फिर तुम हंसते हो, और क्या बतावे, फिर हंस करके हमारे और देखते हो, तो बताओ हम आपके ऊपर न्योछावर हो जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है? हमारी बात नहीं है कृष्ण, तुम चले जाओ संसार में, किसी लोक में जाकर ऐसी मीठी बांसुरी बजाओ, कौन ऐसी स्त्री है कि जो तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी न चली आएगी? आर्य चरितार्थ न चले त्रिलोक्याम, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो, इतने आकर्षक हो, तुम्हारा नाम कृष्ण क्यों है कि सबको आकृष्ट करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कृष्ण है। अरे हमारी क्या बात करते हो कृष्ण, जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, उस वृक्ष के ऊपर पक्षियों को देखो, वो तुम्हारी बांसुरी के ऊपर लट्टू हो गए हैं, पुलकानी अभिभ्रम सब पुलकित हो गई है, इसलिए आप आदि पुरुष के समान हमारी रक्षा करो, और हमारे हृदय में जो संताप पैदा हो रहा है वो आप अपने चरणों से उस संताप को दूर कर दो। योगेश्वरों के ईश्वर, सब भक्तों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उस समय में प्रहस्य सदयम, माने उनको गोपियों की इस करुणापूर्ण अवस्था पर बड़ी दया आई, और गोपियों का ऐसा माधुर्य भाव देख करके वे बड़े प्रसन्न हो गए, और हंस करके वे गोपियों के साथ खेलने लगे। क्या खेलने लगे जी? कि वे सारी की सारी गोपियों को लिए हुए उन सब के बीच में बैठे। आहा कैसे कृष्ण, वैसे कृष्ण की शोभा हो रही है, जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा की शोभा हो रही हो। उदार हास द्विजकुंदीदितिर व्यरोच तैणांक इवा इवो ढुबीरिवृत। कहते हैं कि ताराओं के बीच में चंद्रमा की जैसे शोभा है ऐसे भगवान की शोभा हो रही थी। भगवान ने फिर कैसे किया कि उपगीय मानर उद्गायन, भगवान गोपियों से प्रशंसा सुन रहे हैं और गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। उपगीय मान भी है और वे उद्गाता भी है, गा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वैजयंती माला धारण किए हुए भगवान उन सब गोपियों को लेकर यमुना के तट के ऊपर आए और वहां यमुना जी की ठंडी ठंडी शीतल शीतल तरंगे थी। वो तरंगे जहां दूर दूर तक फैली हुई वहां तक ये भगवान श्री कृष्ण यमुना जी का सुखद स्पर्श है और सुखद जो वायु है उसका स्पर्श कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं और सबको उसका आनंद दिला रहे हैं। भगवान ने गोपियों को आनंदित करने के लिए अपने हाथ फैलाए, बाहु प्रसार हाथ फैलाए, भगवान वहां नाचे और तरह तरह से क्षेल्यावलोक विनोद पूर्ण दृष्टि से देखे, हंसे और हंसाए। इस प्रकार से गोपियों के मन को उन्होंने जीत लिया। गोपी लोग बहुत गोपियां बहुत आनंदित हो गई, लेकिन इस आनंद में एक चीज की कमी आ गई। उन गोपियों ने देखा कि आह एवं भगवते कृष्णाद लब्ध माना, उन गोपियों को कृष्ण से जो मान मिला था उस मान के कारण से उन स्त्रियों ने माना कि संसार में अब हमारे जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारे और हमारे प्रेम में ये संसार कहां से याद आ गया? जब मैं संसार को याद दिलाता हूं तब तो तुम अतिशय प्रेम की बात करते हो, और जब मैं प्रेम की सीमाओं को लांघ करके और फिर प्रेम करता हूं, प्रेम की मर्यादाओं को तोड़ करके प्रेम करता हूं, तो तुमको ऐसा लगता है कि हम संसार में सबसे ऊंची प्रेम करने वाली। अब संसार तुमको याद कहां आया? मेरे दिलाने से, मेरे संसार याद दिलाने से याद आने वाला संसार था वो बुरा नहीं था, लेकिन तुम्हारे और हमारे प्रेम के बीच में जो संसार याद आता है ये अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ने उनका सौभग मद देखा, माने एक प्यार का मद देखा कि कृष्ण का प्यार हमारे पर सबसे ज्यादा है। इस बात का जब मद देखा तो भगवान देखते देखते वहां पर अंतरित हो गए, छिप गए, उन गोपियों के अंदर ही छिप गए। अब छिप गए भगवान तो गोपियां इधर उधर देखती, अरे कहां गए कृष्ण, कहां गए कहां गए। अतप्यंस तमचक्षाण, कृष्ण को बिना देखे वे लोग इधर उधर दौड़ दौड़ करके बहुत परेशान हो गई, बहुत संतप्त हो गई। अब वो कृष्ण के चलने के अनुसार चले, कृष्ण के बोलने के अनुसार बोले, कृष्ण के देखने के अनुसार देखे, कृष्ण के एक एक चेष्टाओं पर वे न्योछावर हो गई। विचेष्टा जगृहु तदात्मिका, वो कृष्णमय हो गई। अरे सखी वो ऐसे मुस्कुराता था कहां गया? असौ अहम, दूसरी सखी ने कहा कि अरे किसको ढूंढ रहे हो, ये मैं हूं, ये देखो मैं कृष्ण हूं। ऐसे सब कृष्ण की लीला कर रहे हैं, गायन तो उच्च ही जोर जोर से गा रहे हैं और एक साथ इकट्ठे होकर एक वन से दूसरे वन पर, दूसरे वन में दूसरे वन से तीसरे वन में सब जगह जा रहे हैं। पप्रच्छ आकाश अवदंतरम बहिर्भूते सुसंतम पुरुषम वनस्पतिन, एक एक वृक्ष से वे पूछने लगी कि बताओ कटहल कृष्ण कहाँ है, बताओ पीपल कृष्ण कहाँ गया, बताओ आम कहाँ है हमारा कृष्ण।